भजित अन्न को कहे हैं जाके विषय अंकुर उत्पत्ति की समर्था नहीं है। भजित अन्न मने पुन्या जड़ा दाना है उनू की कहवांगे एदे विच उगण दी शक्ति नहीं है, उगण दी समर्थ नहीं है, उगण दी योग्यता नहीं है। लाओ दसो सारा कुछ एक ही आ गया ना, ये भी कहते बल नहीं है, शक्ति नहीं है, जोर नहीं है। इस रीति से समर्थ और शक्ति एक एकता लोक में प्रसिद्ध है। वन्नी में भी समर्थ रूप ही शक्ति निलीत है, जाते पद में समर्थ रूप ही शक्ति माननी योग्य है, और पद में समर्थ मान के तामे भिन्न योग्यता को शक्ति कहने का लोक प्रसिद्ध के विरोध बिना और फल नहीं है, केवल लोक प्रसिद्ध का विरोध ही फल है। जो ऐसे कहें समर्थ को ही हम योग्यता कहे हैं तो हमारे मत ही सिद्ध हुआ। जे वो कहे वह सहा जिसनों तुम समर्थ कहें जे उसनों ही योग्यता कहने तो फिर अंदर दूसरे मत बनाने की लोड़ एक ही क्यों तो चले फिर, ठीक है ना। ऐसा कहें हम समर्थ अंगीकार करें तो समर्थ रूप शक्ति पद में संभवे, सो समर्थ को अंगीकार ही नहीं करते, जानते अर्थ ज्ञान की जनकता रूप योग्यता ही पद में शक्ति है, ताकु जय पूछा चाहिए। समर्थ का अभाव केवल पद में ही अंगीकार करे हैं अथवा वन्नी आदि के सर्व पदार्थ में समर्थ का अभाव अंगीकार करे हैं। जो वो कह रहे खाली अग्नि दे विच ही मानते भी समर्थ नहीं है कि सारे पदार्थों में समर्थ रूप शक्ति मानते जे। जो अंत्य पक्ष कहे तो वन्नी आदि पदार्थ में समर्थ रूप शक्ति के प्रतिपादन में उक्त जो युक्ति तिन में खंडित है, और प्रथम पक्ष कहें तो ताके विषय अंत पक्ष दोषते यद्यपि नहीं है, काहेते जो वन्नी आदि सर्व पदार्थ में समर्थ रूप शक्ति नहीं माने तो प्रतिबंधक ते दाह का अभाव बने नहीं, जाते अंत पक्ष में दोष है और दोष प्रथम पक्ष में नहीं, काहेते वन्नी आदि के सर्व पदार्थन में तो समर्थ रूप शक्ति है, जाते प्रतिबंध ते दाह के अभाव का असंभव नहीं, परंतु पद के बिने विषय अर्थ ज्ञान की जनकता रूप योग्यता से भिन्न समर्थ रूप शक्ति नहीं, किंतु पद में अर्थ की योग्यता ही शक्ति है, जय प्रथम पक्ष है, ताके विषय प्रतिबंधक ते दाह का असंभव रूप दोष है, दोष तो नहीं। तथापि पद विषय भी वन्नी की न्याय समर्थ का अंगीकार अवश्य की दाह का असंभव रूप दोष है, दोष तो नहीं। तथापि पद विषय भी वन्नी की न्याय समर्थ का अंगीकार अवश्य किया चाहिए, जह प्रतिपादन करे हैं शंकर के दो पदंते नाही जो असमर्थ इत्यादि सविरोध प्रयत्न अर्थ नहीं कहिए, पद में समर्थ का अंगीकार नहीं तो जो असमर्थ पद सो योग्य कहिए अर्थ ज्ञान का जनक है, जह सिद्ध कहिए मत्ता निश्चय है, हाँ मत का निश्चय है, सो असंगत है, कहते पद असमर्थ है और अर्थ योग कहिए अर्थ ज्ञान का जनक है, ये कैसे हो जाएगा, पद समर्थ है और अर्थ ज्ञान का जनक है। जह वाक्य नपुंसक का अमोघ वीर्य है, इस वाक्य की न्यायिक कहे ही सविरोध है, ये केड़ा दोष आएगा दिज केड़ा दोष आएगा, पद असमर्थ है और अर्थ योग कहिए अर्थ ज्ञान का जनक है, पहले तो पद नू समर्थ असमर्थ कह देता, फिर ज्ञान के ज्ञान करने दे योग है ऐसा भी कह देता, केड़ा दोष आएगा, मेरे मुख में जीवा नहीं है, आत्माश्रय दोष। नाना दो विरुद्ध धर्मों का एक धर्मी में रहना व्याघात दोष, ठीक है ना। जहां वाक्य नपुंसक का अमोघ वीर्य इस वाक्य की न्याय कहे ते ही सविरोध विरोध सहित है, समर्थ सहित का नाम समर्थ है और समर्थ रहित का नाम असमर्थ है, असमर्थ से कोई कारी होवे नहीं, जह लोक में प्रसिद्ध है। जाते असमर्थ पद से भी अर्थ का ज्ञान रूप कार्य बने नहीं। जाते पद में समर्थ मानना योग है। जब समर्थ पद में अंगीकार किया तब शक्ति भी पद में समर्थ रूप ही माननी योग है। इस रीति से अर्थ ज्ञान की जनकता रूप योग्यता पद में शक्ति नहीं किंतु समर्थ रूप ही शक्ति है। जो व्याकरण में और दूषण देखना होवे तो शक्ति के निरूपण में दर्पण ग्रंथ को शोध कहिए देख। दूषण क्लिष्ट है जाते दर्पण उक्त दूषण लिखे नहीं आता। बहुत जुक्ति कठिन है। इन्नी च तुसी बस हो गए, जे होर लिख दिंदा तो फिर की होना सी। ठीक है ना। अब भट्ट के माता भी थोड़ा दस दें। संबंध पद में अर्थ से तदात्म शक्ति सु वेद इम भट्ट के अनुसारी भाखत ताहे भेदा भेद। अब भट्ट मत का थोड़ा जा विचार सुन लो। संबंध पद को अर्थ से तदात्म शक्ति सु वेद, अंदा पद दे साथ अर्थ का जो संबंध है तदात्म संबंध है। तदात्म ने एकता। हुण साडा और आत्मा दा और शरीर दा केड़ा संबंध बन गया? तदात्म संबंध। आपां इहनूं अलग नहीं कर पा रहे। ठीक है ना। संबंध पद को अर्थम से तदात्म शक्ति सु वेद, जो कह रहा पद में जो अर्थ का संबंध है, एक पद है उहदा अर्थ दे नाल जिहड़ा संबंध है, केड़ा संबंध है? तदात्म। आंदा उहनूं ही शक्ति मंदे। इस भट्ट में अनुसारी भागत ताही भेदा भेद, उसको भेदा भेद भी कहेंगे, भेद भी कहेंगे, अभेद भी कहेंगे। भेदा भेद माने भेद भी है और नहीं भी है। पद का अर्थ से जो तदात्म संबंध तांकु भट्ट के अनुसारी शक्ति कहे हैं, सो भेद कहिए तू जान, ताही कहिए तिस तदात्म को भेदा भेद रूप कहे हैं, जय तिनका अभिप्रय है। अग्नि पद का अंगार अर्थ से अत्यंत भेद नहीं। जो अत्यंत भेद होवे तो जैसे अग्नि पद से अत्यंत भिन्न जलादिक हैं, तिनकी अग्नि से प्रतीति होवे नहीं, तैसे अग्नि पद से अंगार रूप अर्थ की प्रतीति नहीं होवेगी। पद में अत्यंत भिन्न अर्थ की प्रतीति होवे नहीं, अत्यंत भिन्न अर्थ की प्रतीति होवे नहीं। जैसे पद का अपने अर्थ से अत्यंत भेद नहीं, तैसे अत्यंत अभेद भी नहीं। जो अत्यंत अभेद वाच्य वाच्य का होवे तो जैसे अग्नि पद के वाच्य अंगार से मुक्का दा होवे है, तैसे अंगार का वाचक अग्नि पद से उच्चारण किए ते भी मुक्का दा हुआ चाहिए। वो कहिंदा जे तुसी इहदा मनदे जे कि तुसी उहदा उहदे नाल अर्थ दा संबंध है ते अग्नि कह दो ते मुँह जल जे, अंगार कह दो ते मुख जल जे, क्योंकि अर्थ दा संबंध है ना अग्नि दे नाल, बिल्कुल तदात्म संबंध है। तो जदों तुसी अग्नि शब्द का उच्चारण किया तो मूँह क्यों नहीं जलिया? फिर जे संबंध हुंदा तो मूँह भी जल जाना सी। तो यह भी ताडा जिहड़ा मत भी खंडन है। पद में उच्चारण ते दा होवे नहीं, जाते अत्यंत अभेद भी नहीं, किंतु अग्नि पद का अंगार रूप अर्थ से भेद सहित अभेद है। भेद है जाते दा होवे नहीं और अभेद है जाते अग्नि पद ते जल आदिकन की न्यायी अंगार की प्रतीति का असंभव भी नहीं। जैसे अग्नि पद का अंगार रूप अर्थ से भेद सहित अभेद है, तैसे उदक बन जल दक इन जल जीवन पदन का पानी रूप अर्थ से भेद सहित अभेद है। देखो जल दे नाम है सब, उदक बन जल दक। जो अत्यंत भेद होवे तो जैसे उदक आदिकन पदन ते अत्यंत भिन्न अग्नि आदिक है, तिनकी उदक आदिक पदन ते प्रतीति होवे नहीं, तैसे पानी रूप अर्थ की भी उदक आदिकन पदन ते प्रतीति नहीं होवेगी। जाते अत्यंत भेद नहीं और अत्यंत अभेद भी नहीं। जो अत्यंत अभेद होवे तो जैसे पानी ते मुख ते शीतलता होवे है, तैसे उदक आदिक पदन ते उच्चारण ते भी मुख में शीतलता हुई चाहिए और पदन ते शीतलता होवे नहीं। जाते अत्यंत अभेद नहीं किंतु भेद सहित अभेद होने ते दो वो दोउ दोष नहीं। इस रीति से सर्वत्र ही अपने अपने वाच्य ते वाचक पद का भेद सहित अभेद है, ता भेद सहित अभेद को ही भट्ट के अनुसारी तदात्म संबंध कहे हैं और भेदाभेद कहे हैं। सो भेदाभेद रूप तदात्म संबंध भी सर्व पदन के पदन में अपने अपने अर्थ की शक्ति है, तदात्म संबंध से जुदा समर्थ रूप शक्ति नहीं। भेद भेद में जुक्ति कही, ये भेद भेद अभेद में जुक्ति कही। जह ओम अक्षर ब्रह्म है यू कहत भेद अभेद, पुनः बानी में पद अर्थ बाहर देखत जह भेद, है ना। असली पॉइंट तो ये है ना, हाँ सारा घुमा फरा के तो आना तो कितने आप जो सा मुख लक्ष्य है ये अर्थ कादे वास्ते दसे, ये तो सिर्फ इस वास्ते दसे है भी जेड़ी बुद्धि है थोड़ी तीक्ष्ण हो जावे। क्यों तीक्ष्ण हो जावे? क्योंकि बुद्धि तीक्ष्ण होएगी तो जड़ा आत्मा है बहुत सूक्ष्म है, बुद्धि सूक्ष्म होएगी तो सूक्ष्म विषय नु पकड़ पाएगी, सूक्ष्म वस्तु नु पकड़ पाएगी। अगर सूक्ष्म नहीं है तो फिर सूक्ष्म वस्तु नु कैसे पकड़ेगी? ये सूक्ष्म बुद्धि करने वास्ते ही इतना थोड़ा दिमाग लगा देंगे, नाले दूसरे जड़े मत है वह की कहेंगे उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान करा देंगे। जह ओम अक्षर ब्रह्म है जू कहत भेद अभेद, पुन बानी में पद अर्थ बाहिर देखत जह भेद। देखो जह ओम अक्षर ब्रह्म है जू कहत भेद अभेद, द ओम अक्षर जो है वो ब्रह्म रूप है, ठीक है। और ओम अक्षर कहाँ? बाणी में। तो ब्रह्म किधर है? सर्वत्र व्यापक। ओम अक्षर किथे है? बाणी में। और ब्रह्म किथे है? सर्वत्र व्यापक। तो कैसे बनेगी गल, ठीक है ना। भेदाभेद कैसे बनेगा? ये उन्हें सिद्ध करेगा पहले। पुन बाणी में पद अर्थ ते, पुन बाणी में पद अर्थ, पद कहे बाणी में, अर्थ कहे बाहर। पद किथे उच्चारण किया? बाणी च। तो अर्थ किथे है? भी घट शब्द तुम उच्चारण किया, तो घट शब्द का उच्चारण कितने होया? मुख दे विच। ते घड़ा कितने है? तो घड़ा से बाहर है। तो भेदाभेद कैसे हो जाएगा? वो अंदर है, वो बाहर है, यही वो कह रहा। पुन बाणी में पद अर्थ बाहिर, पुन बाणी में पद अर्थ बाहिर, अर्थ से बाहर है। देखते जह भेद मांडुक आदिक वेद वाक्यन में ओम अक्षर ब्रह्म है जह कहया। मांडुक उपनिषद है, मांडुकारिका, ओदे विच ओम अक्षर दी बहुत सुंदर उपासना दसी है। जह कहया ता व्याकरण की रीति से प्रकाश रूप सर्व की रक्षा करता ओम अक्षर का अर्थ है, ऐसा ब्रह्म है। जानते ओम अक्षर का वाच्य है और ब्रह्म वाच्य है, वाचक वाचक कह रहा है, वाचक और वाच्य। ब्रह्म का वाचक है कौन? ओम अक्षर। और ब्रह्म क्या हो गया? वाच्य। जो वाच्य वाचक का आपस में अत्यंत भेद होवे तो वाचक ओम अक्षर का और वाच्य ब्रह्म का मांडुक आदिकन में भेद अभेद नहीं कहे, और ओम अक्षर ब्रह्म है इस रीति से अभेद कहया है। जानते वाच्य वाचक के अभेद में वेद वचन प्रमाण है, और सर्वलोक की प्रतीति से वाच्य वाचक का भेद सिद्ध है। काहे ते अग्नि पद अग्नि आदिक पद वाणी में है, और अंगार आदिक तिनका अर्थ वाणी से बाहर चूल्हे आदिकिन में है। तैसे ओम अक्षर रूप पद वाणी में है, और तां का अर्थ ब्रह्म वाणी से वाणी में नहीं है, किंतु वाणी से बाहर कहिए अपनी महिमा में है। यद्यपि ब्रह्म व्यापक है, जानते वाणी में ब्रह्म का अभाव नहीं, तथापि ब्रह्म में वाणी नहीं है, ठीक है ना। ब्रह्म है वाणी में, हाँ हाँ ब्रह्म में वाणी है, वाणी में ब्रह्म नहीं है, वाणी कैसे उन उच्चारण कर लेगी। कहत कबीर गूंगे खुड़ खाया, पूछे तो क्या वो क्या कहेगा, वाणी उसको उच्चारण नहीं कर सकती ना। हाँ ब्रह्म में तो सब कुछ ही उत्पन्न हो रहा है, वाणी च वाणी च तो लोक का उच्चारण करोगे, जितना संसार है जो वाणी उच्चारण करेगी तो ये संसार का उच्चारण करेगी, ब्रह्म का कैसे कर लेगी। ठीक है ना, वाणी में ब्रह्म नहीं, इस रीति से सर्व लोकन को पद वाणी में और अर्थ वाणी ते बाहर प्रतीत होवे है, जाते पद का और अर्थ का भेद लोक में प्रसिद्ध है। इस रीति से वाच्य वाचक के भेद में सर्व लोक का अनुभव प्रमाण है और तिनके अभेद में वेद वचन प्रमाण है। जाते पद का अर्थ से भेदा भेद रूप तदात्म संबंध अप्रमाण नहीं किंतु प्रमाण सिद्ध है। प्रसंग ते अन्य स्थान में भी भेदा भेद तदात्म संबंध दिखावे हैं। बस जी कितना कर गया। जो जो गुण बस कर इतने रहने दो जी, कल करेंगे। कार्य कारण सान, देखो गुण गुणी जाति व्यक्ति और क्रिया क्रियावान और कारण और कारी, इनका सदा ही तदात्मक संबंध ही होता है। तदात्मक मैंने अभेद संबंध, केड़े केड़े गुण और गुणी, गुण किथे रहेंगे, कले तो नहीं रहेंगे ना, गुण किथे रहेंगे गुणी च, और जाति केदे विच रहेगी व्यक्ति च, ठीक है, और क्रिया केदे विच रहेगी क्रियावान च, और इस जेड़े संबंध है कारण और कार्य, कार्य किच रहेगा कारण च, इन्हों का सारे का होंगे तदात्मक संबंध, किदा किदा गुण गुणी जाति व्यक्ति क्रिया क्रियावान और कार्य कारण, इन्हों का हमेशा तदात्मक संबंध समझो। जो गुण गुणी और जाति व्यक्ति क्रिया और तदवान, तदवान मैंने क्रियावान, ठीक है, गुण गुणी जाति व्यक्ति और क्रिया क्रियावान संबंध लख तदात्म, इनको लख मैंने जान, इनका जेड़ा संबंध है केड़ा है तदात्म संबंध, और किसका कार्य कारण, और कार्य का और कारण का भी आपस विच तदात्मक संबंध ही है। गुण गुण कौन कौन है, रूप रस गंध आदि गुण है, पांच गुण है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही तो संसार, और केड़ा संसार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण है, तिनका आसरा गुणी कहिए है, जैसे रूप आदि कन का आश्रय भूमि गुणी है, ये भूमि में पंजे गुण मिलेंगे आपको, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बाकी हैं तो में एक हेच में चार, किसी में तीन, किसी में एक, किसी में दो, पृथ्वी में पांचे मिलेंगे, तो यही क्या है, रूप रस गंध आदि गुणी है, तिनका आश्रय गुण है, रूप रस गंध आदि गुण है, तिनका आसरा गुणी है, जैसे रूप आदि कन का आश्रय भूमि गुणी है, अनेक में अनेक माही रहे जो एक धर्म, सो जाति की है, जैसे सर्व ब्राह्मण शरीर के माही एक ब्राह्मणत्व है, और सर्व शूद्रन माही शूद्रत्व है, सर्व जीवन माही जीवत्व है, पुरुषन में पुरुषत्व है, सर्व घट घटन माही घटत्व है। देखो घटत्व मैंने दा पना, जैसे ब्राह्मणत्व ब्राह्मण पना, हाँ क्षत्रिपना है ना, शूद्रपना और घटत्वपना, घट में केड़ी जाति है, घटत्व, जैसे ये कह रहे हैं जाति और व्यक्ति, देखो एक में एक जाति सारे दे विच है, जितने ब्राह्मण है उन्होंने केड़ी जाति है, ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणपना सारे दे विच है, जितने जट है उन्होंने की है, जटपना सारे दे विच ही है, तो जाति तो एक है, तो सारे जटा दे विच घूम रही कि नहीं, जटत्व जाति तो एक है, सारे च घूम रही, ब्राह्मण जाति एक है, ब्राह्मणपना सारे ब्राह्मणों के विच है, जितने व्यक्ति हैं ब्राह्मण व्यक्ति हो गए, और ब्राह्मणत्व जड़ी वो जाती है, ब्राह्मण पना जो है वो जाती है, पुरुष में पुरुषत्व है जाती। जितने पुरुष है, कितने पुरुष है, करोड़ा पुरुष है, वो सारे दे विच एक ही जाती है, केड़ी, पुरुषत्व जाती। ठीक है, अनेक माहे ये हो गया, घटत तांकू लोक माहे ब्राह्मण पना। देखो ब्राह्मण पना, शूद्र पना, जीव पना, पुरुष पना, घट पना कहे हैं, सो ब्राह्मण आदिक शरीर माही ब्राह्मणत्व आदिक जाति है। जाति का आश्रय जो ब्राह्मण आदिक सो व्यक्ति की ये है, उस जाति का जो आसरा हो क्या हो गया, व्यक्ति। तो क्या हो गया, जाति और व्यक्ति दो हो गए ना, एक हो गया जाति, एक हो गया जाति का आश्रय कौन हो गया, व्यक्ति, और गुण का आसरा कौन हो गया, गुणी। गमन अगमन आदि की क्रिया कहे हैं, गमन अगमन मैंने जाना और आना, गमन मैंने जाना, अगमन मैंने आना, आना जाना जो क्या है, क्रिया है। और तद्वान कहिए तिस वाला जह अर्थ क्रिया का आश्रय, जाना आना कौन कर रहा है, केदे विच है जाना आना, पुरुष दे विच, ते क्रियावान कौन हो गया, जो आ जा रहा है, पावे पशु है, पावे पक्षी है, पावे स्त्री है, पावे पुरुष है, वो खुशी है, वो जो भी क्रिया कर रहा है क्रियावान वही पुरुष कहलाएगा। इतने पदार्थन का तदात्म संबंध है, जह लख कहिए जान, और कारण कार्य को सान कहिए गुण गुणी आदि के विषय मिलाव अभिप्राय। जय है कारण कार्य का भी गुण गुणी की न्यायी तदात्म संबंध है, गुण का और गुणी का आपस में तदात्म संबंध है, जाति का और व्यक्ति का आपस में तदात्म संबंध है, तैसे क्रिया और क्रियावान का तदात्म संबंध है, कारण का और कार्य का भी तदात्म संबंध है। तदात्म नाम भेद सहित अभेद का है, भेद सहित ये केदा मत है, भट का अभेद भी है, है ना, आगे खंडन करेगा, अंदर भेद और अभेद दोनों विरुद्ध आपस विच धर्म, जैसे दिन है रात है, ये आपस विच विरुद्ध है, जब दिन होगा रात्रि नहीं होगी, जब रात्रि होगी तो दिन नहीं होगा, तो तुसी कितना कह रहे हो भेद अभेद, जब भेद होगा तो अभेद नहीं होगा, जब अभेद होगा तो फिर भेद नहीं होगा, तुसी किसे दोनों एक विच किसे कह रहे जी, ये खंडन करेगा ग्रंथकार। ठीक है ना, यद्यपि निमित्त कारण का और कार्य का तो भेदा भेद रूप तदात्म नहीं है, किंतु अत्यंत भेद है, तथापि देखो केदा केदा ना, निमित्त कारण का और कार्य का, निमित्त कारण दो प्रकार के है ना, एक निमित्त कारण एक उपादान कारण, उपादान घट दा उपादान कारण क्या है, तो निमित्त कारण कुम्हार, कुम्हार दा घड़े दा थोड़ी तदात्म संबंध होगा, कुम्हार अलग है घड़ा अलग है, मिट्टी दा और घड़े दा तदात्म संबंध होगा, तथापि उपादान कारण का और कार्य का भेदा भेद रूप तदात्म संबंध है, जैसे घट के निमित्त कारण कुलाल दंड आदि हैं, तिनका घट रूप कार्य से अत्यंत भेद भी है, परंतु उपादान कारण मृत मृतिका पिंड और घट कार्य का भेद सहित अभेद है। सो जो मृतका पिंड से घट अत्यंत भिन्न होवे, तो जैसे मृतिका पिंड से अत्यंत भिन्न तेल की उत्पत्ति होवे नहीं, तैसे घट की भी उत्पत्ति नहीं होवेगी। वो कह रहा है जैसे कड़ा है ना, कड़ा और मिट्टी, उन्हां दा आपस में बहुत ज्यादा अंतर होवे, तदात्म संबंध ना होवे, तो फिर मिट्टी तो कड़ा नहीं बनना चाहिए। जैसे तेल दा और मिट्टी दा के बहुत भेद है, और मिट्टी चो थोड़ी तेल निकलेगा, तेल ते तेला चो निकलेगा। उपादान कारण का कार्य ते अत्यंत भेद होवे तो भी मृतक मृत पिंड से घट की उत्पत्ति होवे नहीं, काहे ते अपने स्वरूप से अपनी उत्पत्ति होवे नहीं, अपने कंधे ते आप बैठ जाओगे, अपने कंधे ते आप नहीं बैठ सकते, दूसरा ही को बैठेगा। ठीक है ना, इस रीति से उपाद यही है ना, ਜਾਂ ਤੇ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਾ ਕਾਰੀ ਤੇ ਭੇਦ ਸਹਿਤ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਤਿਅੰਤ ਭੇਦ ਪਕਸ਼ ਕਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਭੇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਅਭੇਦ ਪਕਸ਼ ਕਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਸੇ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਾ ਕਾਰੀ ਤੇ ਭੇਦ ਯੁਕਤੀ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਸੇ ਵੀ ਉਪਾਦਾਨ ਤੇ ਕਾਰ ਕਾ ਭੇਦ ਭੇਦਾਭੇਦੀ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਹ ਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਹ ਘਟ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਸੇ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਸੇ ਭੇਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਦੇਖੇ ਤੋ ਘਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਮ੍ਰਿਤਿਕਾ ਸੇ ਭਿੰਨ ਕੁਛ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਅਗਲ ਬਗਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ। ਤੇ ਘੜਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘੜਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਪ ਉਹ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤੀ ਕਾ ਏਵ ਸਤਿਅਮ, ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਮਿੱਥਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਇਹ ਸਭ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਮਰਨ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਮ੍ਰਿਤਿਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਭੇਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਸੇ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਾ ਕਾਰੇ ਤੇ ਭੇਦਾ ਭੇਦ ਰੂਪ ਤਦਾਤਮ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਗੁਣ ਔਰ ਗੁਣੀ ਕਾ ਵੀ ਭੇਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਜੋ ਘਟ ਕੇ ਰੂਪ ਕਾ ਘਟ ਸੇ ਅਤਿਅੰਤ ਭੇਦ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਘਟ ਕੇ ਰੂਪ ਕਾ ਘਟ ਸੇ ਅਤਿਅੰਤ ਭੇਦ ਹੋਵੇ, ਤੋ ਜੈਸੇ ਘਟ ਤੇ ਪਟ ਕਾ ਅਤਿਅੰਤ ਭੇਦ ਹੈ, ਸੋ ਪਟ ਘਟ ਕੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਸਵਤੰਤਰ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਘਟ ਕਾ ਰੂਪ ਵੀ ਘਟ ਕੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀ ਕਾ ਅਤਿਅੰਤ ਅਭੇਦ ਹੋਵੇ ਤੋ ਵੀ ਘਟ ਕਾ ਰੂਪ ਘਟ ਕੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਆਪ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਆਪ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਤਮਾ ਆਸਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੈਸੇ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਗਿਆਨ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦੇ ਬੇਦ ਵਿਆਸੇ ਕੋਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦੇ ਬੇਦ ਵਿਆਸੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਆਪ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਣ ਗੁਣੀ ਕਾ ਭੇਦਾ ਭੇਦ ਰੂਪ ਤਦਾਤਮ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਹ ਜੁਗਤੀ ਜਾਤੀ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਥਾ ਕਿਰਿਆ ਔਰ ਕਿਰਿਆਵਾਨ ਕੇ ਭੇਦਾ ਭੇਦ ਰੂਪ ਤਦਾਤਮ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਨੀ, ਔਰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਜੋ ਮਤ ਤਾਂ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤੀ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕੀ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਵਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਐਸੇ ਟੇਢੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਰੇ ਜਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਵਿੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੰਗੀ ਰਹਿਣ ਦਿਉ, ਟੇਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੇਢੀ ਰਹਿਣ ਦਿਉ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਟ ਦਾ ਮਤ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਖੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਗਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਬੇੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਯੋ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤੀ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਔਰ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਅਦ ਭੱਟ ਅਬ ਭੱਟ ਮਤ ਕਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਏਕ ਵਸਤੂ ਕੋ ਏਕ ਮੇ ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਤੀ ਜੁਗਤ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿਤ ਜਹ ਮਤ ਸਕਲ ਅਸ਼ੁੱਧ। ਅਬ ਨਿਸ਼ਚਲ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਕ ਵਸਤੂ ਕੋ ਏਕ ਮੇ ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਵਿਰੁੱਧ, ਏਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਕਾ ਭੇਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਔਰ ਭੇਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਕੈਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਘੜੇ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਵੀ ਹੈ ਅਭੇਦ ਵੀ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਮੈਨੇ ਏਕਤਾ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਭੇਦ ਕਹੋ ਜਾਂ ਭੇਦ ਕਹੋ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਏਕ ਵਸਤੂ ਕੋ ਏਕਮੇ ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਵਿਰੁੱਧ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਭੇਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੁਤੀ ਜੁਗਤ ਜੁਗਤ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿਤ ਜਹ ਸਕਲ ਮਤ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਅੰਦਾ ਜੁਗਤੀ ਜੁਗਤ ਮਤ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਹੈ ਸਭ ਸਕਲ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਰ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ, ਅਭਿਪਰਾ ਜੈ ਹੈ ਜਦਪਿ ਏਕ ਘਟ ਮੇਂ ਆਪਣਾ ਅਭੇਦ ਹੈ ਔਰ ਪਰਸ ਪਰ ਕਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਤਥਾਪਿ ਜਾਂ ਕਾ ਭੇਦ ਜਾਂ ਕਾ ਅਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਟ ਮੇਂ ਆਪਣਾ ਅਭੇਦ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਕਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਘਟ ਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇ ਤਾਂ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟ ਹੈ, ਪਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਘਟ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਭੇਦ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭੇਦ ਭੇਦ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਸੇ ਕਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਥਾਪੀ ਜਾਂ ਕਾ ਅਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਕਾ ਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅਭਿਪ੍ਰੇ ਤੇ ਏਕ ਵਸਤੂ ਕਾ ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹਿਆ ਹੈ, ਤਥਾ ਏਕ ਵਸਤੂ ਕਾ ਕਹੇ ਕਹੀਏ ਘਟ ਕਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਂ ਅਭੇਦ ਔਰ ਪਰਸੇ ਭੇਦ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਾਂ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੈ ਜਾਵੇਂ ਅਭੇਦ ਹੈ ਤਾਵੇਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਾਵੇਂ ਭੇਦ ਹੈ ਤਾਵੇਂ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਭਿਪ੍ਰੇ ਤੇ ਏਕ ਵਸਤੂ ਕਾ ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਏਕ ਮੇਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹਿਆ ਹੈ, ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਆਪਣੇ ਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਏਕ ਵਸਤੂ ਮੇਂ ਜਾਂ ਕਾ ਭੇਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾ ਅਭੇਦ, ਔਰ ਜਾਂ ਕਾ ਅਭੇਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾ ਭੇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਵਾਚਿਅ ਵਾਚਕ ਗੁਣ ਗੁਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਰਿਆਵਾਨ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰਿਕਾ ਜੋ ਭੇਦਾ ਭੇਦ ਰੂਪ ਤਦਾਤਮਕ।